अध्याय 50 मांसाहार। परमेश्वर ने हमारे प्रथम माता पिता को वही भोजन दिया जिसे उसने सारी जाति के लिए नियुक्त किया था। किसी जीव की हत्या करना उसकी योजना के प्रतिकूल ही था। एदेन की बारी में कोई मृत्यु ना हो, ये योजना थी। वाटिका के वृक्षों का फल मनुष्य का भोजन था। परमेश्वर ने मनुष्य को मांस खाने की आज्ञा जल प्रलय से पहले कभी नहीं दी थी। हर एक पदार्थ जिस पर मनुष्य जीवन निर्वाह कर सकता था नष्ट हो चुका था। इसलिए परमेश्वर ने नूम की आवश्यकता को महसूस करते हुए आज्ञा दी कि वो उन पवित्र पशुओं का मांस जिन्हें वो किश्ती में ले गया था खा सकते हैं। परंतु पशुओं का मांस मनुष्य के लिए अति स्वास्थ्यवर्धक आहार नहीं था। जल प्रलय के बाद लोग अधिकतर मांसाहारी हो गए थे। परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की चाल बिगड़ गई थी और उसकी ये आदत हो गई कि वो अपने को अभिमानी होके परमेश्वर से ऊंचा समझने लगा और अपने मन की इच्छा के अनुसार चलने लगा। उसने उस चिर आयु जाति को उनके पापमय जीवन को कम करने के लिए मांस खाने की आज्ञा दी। जल प्रलय के तुरंत बाद मनुष्य जाति का डील डॉल और आयु घटने लगी। एदेन में मनुष्य का भोजन चुनकर परमेश्वर ने दिखलाया कि उत्तम भोजन क्या है, और इसराइलियों के लिए भोजन का चुनाव करने में उसने उसी पाठ को सिखलाया। उसके द्वारा उसने जगत को आशीर्वाद देना तथा सिखलाया चाहा। उसने उनको वो भोजन जुटाया जो इस मनोरथ को पूरा करने के लिए अत्यंत अनुकूल था, अर्थात मन्ना, स्वर्गीय रोटी, न कि मांसाहार। उनको असंतुष्टता तथा मिस्र की मांस की हांडियों के लिए बुड़बुड़ाने ही के कारण मांस खाने की आज्ञा उन्हें दी गई, और ये भी थोड़े से समय के लिए। इसके प्रयोग से हजारों लोग बीमारी और मृत्यु के शिकार हुए। फिर भी भोजन का हार्दिक स्वागत नहीं किया गया, और ये असंतोष तथा बुड़बुड़ाहट का चाहे वो प्रत्यक्ष हो या गुप्त कारण बना रहा, पर यह स्थायी नहीं बना। कनान देश में बसने पर इसराइलियों को मांस खाने की आज्ञा दी गई थी, परंतु वो भी बड़े प्रतिबंध के साथ, जिसके कारण बुरे परिणाम कम हो गए थे। सूअर का मांस खाना मना किया गया है, और उन अन्य जानवरों, पक्षियों तथा मछलियों का मांस भी वर्जित था जो अपवित्र कहे गए थे। जिन पशुओं के मांस खाने की आज्ञा मिली थी उनकी चर्बी और लोहू खाना सख्ती से वर्जित किया गया। केवल ऐसे पशुओं का मांस खाया जा सकता था जो स्वस्थ अवस्था में हों। कोई पशु जो किसी जंगली जानवर से फाड़ा गया हो, जो स्वयं मर गया हो, अथवा जिसकी देह से सावधानी के साथ लोहू नहीं निकाला गया हो, भोजन के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता था। इसराइलियों को भोजन के लिए जो ईश्वरीय भोजन नियुक्त किया गया था उससे भटक जाने में बड़ी हानि उठानी पड़ी। उन्होंने मांसाहार की इच्छा की और उसके परिणाम भी भुगते। वे परमेश्वर के आदर्श चरित्र तक नहीं पहुंचे, न उसके मनोरथ को पूरा किया। परमेश्वर ने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, पर उनको दुबला कर दिया। भजन संहिता 106 आयत 15। उन्होंने भौतिक पदार्थ को आत्मिक से बहुमूल्य समझा, और वे उस पवित्र श्रेष्ठता तक जो परमेश्वर चाहता था पहुंच न सके। मांसाहारी केवल व्यवहार किया हुआ अनाज तथा वनस्पति ही खाते हैं, क्योंकि पशु ही सर्वप्रथम इन पदार्थों से उस खुराक को प्राप्त करते हैं जिससे शरीर बढ़ता है। वो जीवन जो अनाज तथा सब्जी में होता है खाने वाले के शरीर में पहुंचता है। हम उसको उस जानवर के मांस खाने से प्राप्त करते हैं। कितना उत्तम है कि हम उसे सीधा उस खाद्य पदार्थ से प्राप्त करें जिसे परमेश्वर ने हमारे उपयोग के लिए जुटाया। अधिक रोग व बीमारी का कारण। मांस कभी भी उत्तम भोजन पदार्थ नहीं रहा, परंतु उसका उपयोग अब दुगना आपत्तिजनक है, क्योंकि पशुओं में रोग वेग से बढ़ता जा रहा है। यदि लोग उन जीते पशुओं को देख सकते और जान सकते कि किस किस्म का मांस वे खाते हैं, तो वे उसे घृणा कर कभी न छूते। लोग बराबर ऐसा मांस खाते हैं जो क्षय रोग तथा कैंसर के कीटाणुओं से भरा रहता है। इस प्रकार क्षय रोग, कैंसर तथा अन्य घातक रोग मनुष्यों को लग जाते हैं। मांस खाने से रोग लग जाने की संभावना 10 गुना बढ़ जाती है। पशु रोगग्रस्त होते हैं, और उनके मांस खाने से हम रोग कीटाणु अपने ऊतकों और रक्त में बो देते हैं, और जब मलेरिया ग्रस्त वायुमंडल में छोड़ दिए जाते हैं तब इनको अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं, और उस समय भी जब सर्वव्यापी और छूत रोग के बीच घिर जाते हैं तो देह ऐसी अवस्था में नहीं होता कि रोग का प्रतिरोध कर सके।
जो प्रकाश परमेश्वर ने मुझे दिया है उसके अनुसार कैंसर तथा रसौली का रोग अधिकतर मृतक जानवरों का मांस खाने से होता है। अनेक जगहों में मछलियां गंदी चीजों के खाने से इतनी दूषित हो जाती हैं कि उनके खाने से रोग पैदा हो जाते हैं। ये विशेषकर उन स्थानों में होता है जहां मछलियों का संपर्क बड़े बड़े शहरों की गंदी नालियों से होता है। जो मछलियां इन गंदी नालियों में के पदार्थ को खाती हैं, हो सकता है कि वे दूर के पानियों में पहुंच जाएं और वहीं स्वच्छ तथा ताजा पानी में पकड़ी। यों जब भोजन के रूप में ये खाई जाती हैं तो ये उनमें जो खतरे से अनभिज्ञ हैं बीमारी तथा मृत्यु पैदा कर डालती हैं। मांसाहार के प्रभाव का हो सकता है कि तुरंत पता न लगे, परंतु ये कोई प्रमाण नहीं है कि वो हानिकारक नहीं है। बहुत कम लोगों को यकीन कराया जा सकता है कि मांस खाने के कारण ही उनका रक्त दूषित हुआ है तथा सारी मुसीबत आई है। बहुत से लोग उन बीमारियों से मर जाते हैं जो पूर्णतः मांस खाने से उत्पन्न होती हैं, और वे दूसरों की तरह असली कारण का पता भी नहीं कर सकते। सूअर तुम्हारे लिए अशुद्ध है। सूअर की जातियों में ढेर परजीवी पाए जाते हैं। सूअर के विषय में परमेश्वर ने कहा, वो तुम्हारे लिए अशुद्ध है, सो न तो इनका मांस खाना और न इनकी लोथ छूना। व्यवस्था विवरण 14 आयत 8। ये आज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि सूअर का मांस खाने के लिए अशुद्ध है। सूअर मैले की सफाई करने वाले हैं और वे इस काम के लिए बनाए हैं। मानव उनका मांस किसी भी हालत में न खाएं। किसी भी जीवित पशु के मांस का स्वस्थ होना असंभव है, जबकि गंदगी उसका प्राकृतिक तत्व है और प्रत्येक घृणित पदार्थ पर गुजर बसर करता है। सूअर का मांस, यद्यपि ये एक आम आहार बन चुका है, बहुत ही हानिकारक है। परमेश्वर ने इब्रियों को सूअर का मांस खाना केवल अपना इख्तियार दिखलाने को वर्जित नहीं किया, परंतु इसलिए कि वो मनुष्य के लिए उचित खाद्य पदार्थ नहीं था। उससे देह में कंठमाला क्षयरोग की ग्रंथियां उत्पन्न हो जाती है, और विशेषकर उसे गर्म जलवायु में तथा विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर देता है। ऐसो आबहवा में उसका असर देह पर ठंडे मौसम की अपेक्षा अधिक हानिकारक पड़ता है। सूअर का मांस दूसरे मांसों की अपेक्षा रक्त को दूषित कर देता है। जो सूअर का मांस बेरोकटोक खाते हैं सिर्फ बीमारी की आशा कर सकते हैं। मस्तिष्क की महीन सूक्ष्मग्राही वाहिनियां निर्बल तथा ऐसी धूमिल हो जाती हैं कि पवित्र चीजों का कोई ज्ञान नहीं रहता, बल्कि उनको हटाकर सामान्य वस्तुओं के बराबर समझा जाता है। जो लोग घर से बाहर काम करते हैं सूअर के मांस खाने के बुरे परिणामों को महसूस नहीं करते, जिस प्रकार वे महसूस करते हैं जिनका काम घर ही घर में होता है और जिनका काम कुर्सी पर बैठ के किया जाता है तथा जिनका कार्य दिमागी होता है। बुद्धि और आत्मा पर उसका प्रभाव। मांसाहार की नैतिक खराबियां शारीरिक खराबियों से कुछ कम प्रत्यक्ष नहीं है। मांसाहार स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, और जो वस्तु देह पर प्रभाव डालती है उसका मन तथा आत्मा पर भी असर पड़ता। मांसाहार स्वभाव को बदल देता तथा पाशविकता को बलवंत करता है। हम उसी वस्तु से बनते हैं जिसे हम खाते हैं, और अत्यधिक मांस खाने से मानसिक शक्ति का ह्रास होता है। विद्यार्थीगण अपनी पढ़ाई में बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे यदि वे मांस को कतई न चखें। मांस खाने से जब मानव का पाश्विक भाग बलवंत हो जाता है तो मानसिक शक्तियां समान राशि में घट जाती हैं। मनुष्य के आहार का बहुत साधारण होने का यदि कभी कोई समय था, वो अब है। हमारे बालकों के सामने मांस नहीं परोसना चाहिए। उसके प्रभाव से कामेच्छा बलवान व उत्तेजित होती और नैतिक शक्तियां निर्जीव हो जाती हैं। जो लोग मसीह के शीघ्र गमन की बाट जोहने का दावा करते हैं उनमें बड़े बड़े धर्म सुधारों की आशा करनी चाहिए। स्वास्थ्य सुधार के द्वारा हमारे लोगों के बीच वो काम होना चाहिए जो अभी तक नहीं किया गया है। कुछ लोग हैं जिन्हें मांस खाने के खतरों की तरफ से जागना चाहिए, जो अब तक मांस खाने से अपने शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे हैं। मांस खाने के प्रसंग में बहुत से लोगों के हृदय की आधी ही तब्दीली हुई है। वे परमेश्वर के लोगों में से निकलकर फिर उनके संग संग नहीं चलेंगे।
जो सत्य पर विश्वास करने का दावा करते हैं
उन्हें शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों की सावधानी के साथ रक्षा करनी चाहिए, ताकि परमेश्वर और उसके कार्य का किसी रीति से उनके वचन व कर्म द्वारा निरादर ना हो। सारी आदतों तथा रीति रिवाजों को परमेश्वर की इच्छा के अधीन लाना चाहिए। हमें अपने आहार पर सावधानी के साथ ध्यान देना चाहिए। मुझे स्पष्टता से बतलाया गया कि परमेश्वर के लोगों को मांस खाने के प्रति दृढ़ कदम उठाना चाहिए। क्या परमेश्वर अपने लोगों को 30 वर्ष तक यह संदेश देवे कि यदि वे चाहें कि उनका रक्त शुद्ध और मस्तिष्क स्वच्छ हो तो उनको मांस खाना छोड़ देना चाहिए, और यह ना चाहें कि वे इस संदेश पर ध्यान देवे? मांसाहार के प्रयोग से पार्श्विक प्रकृति बलवान और आध्यात्मिक प्रकृति निर्बल हो जाती है। आहार में परिवर्तन के बारे में निर्देशन। पेशीय शक्ति मांस खाने पर निर्भर है, ऐसा विचार रखना गलत है। निरामिष भोजन द्वारा देह की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती तथा बलिष्ठ स्वास्थ्य का आनंद अच्छी तरह लिया जा सकता है। शुद्ध रक्त बनाने के लिए अनाज, फल, मेवे तथा सब्जियों में सारी बलवर्धक शक्तियां पाई जाती हैं। मांसाहार इतनी उत्तम रीति से अथवा इतनी पूर्णता से इन तत्वों को जुटा नहीं सकता। यदि मांस का प्रयोग स्वास्थ्य तथा बल के लिए जरूरी होता तो मांसाहार मनुष्य की खुराक में आदि ही में संयुक्त किया जाता। जब मांस खाना बंद कर दिया जाता है उस समय कमजोरी, बलहीनता की अक्सर महसूसियत होती है। बहुत से इसे एक प्रमाण कहकर अनुरोध करते हैं कि मांस खाना जरूरी है, परंतु यह इसलिए होता है कि इस प्रकार के भोज्य पदार्थ उत्तेजक होते हैं, इसलिए कि वे रक्त में ताप लाते और स्नायुओं को उत्तेजित करते हैं। उनकी आवश्यकता महसूस की जाती है। बाजों के लिए मांस छोड़ना इतना कठिन है जितना शराबी के लिए प्याली, परंतु उनकी बाद की हालत बेहतर रहेगी। जब मांसाहार का परित्याग किया जाता है तो उनकी जगह विभिन्न प्रकार के अनाजों, मेवों, सब्जियों तथा फलों से पूरी होनी चाहिए जो बलवर्धक तथा भूख बढ़ाने वाले हों। यह बात विशेषकर उनके लिए आवश्यक है जो कमजोर हैं तथा जिन पर लगातार काम करने का भार रहता है। विशेषकर जहां मांस आहार का मुख्य पदार्थ नहीं बनाया जाता, वहां पाक शास्त्र की बड़ी जरूरत है। कोई ऐसा पदार्थ तैयार करना चाहिए जो मांस का स्थान ले सके, और ये पदार्थ जो मांस का स्थान लेंगे अच्छी तरह तैयार करने चाहिए जिससे मांस की इच्छा ही ना उपजे। मेरा परिचय उन परिवारों से हुआ जिन्होंने मांसाहार को तो छोड़ दिया, परंतु बदले में दरिद्रता का आहार अपना लिया। उनका भोजन ऐसी असावधानी से तैयार किया जाता है कि पेट भी उससे घृणा करता है। ऐसों ही ने मुझसे कहा कि स्वास्थ्य सुधार उनको मुआफिक नहीं आता और उनकी शारीरिक शक्ति क्षीण होती है। भोजन साधारण रीति से तैयार करना चाहिए, फिर भी ऐसी सुंदरता से पकाना चाहिए जिससे भूख बढ़े। परमेश्वर शेष मंडली को उन्हीं की भलाई की खातिर परामर्श देता है कि मांस, चाय तथा काफी आदि अन्य हानिकारक खाद्यों का उपयोग छोड़ दें। अनेकों अन्य पदार्थ हैं जिन पर हम निर्वाह कर सकते हैं और जो आरोग्यकर तथा अच्छे हैं। जो लोग प्रभु के आगमन का इंतजार कर रहे हैं उनमें मांस खाना अंत में पृथक हो जाएगा, उनकी खुराक में मांस सम्मिलित न होगा। हमें सर्वदा यह बात दृष्टि में रखनी चाहिए और दृढ़ता से उसी ओर कार्यरत रहना चाहिए। मांसाहार के निरंतर उपयोग से मानसिक, नैतिक तथा शारीरिक अवयव अव्यवस्थित, मस्तिष्क धूमिल तथा नैतिक चेतनता कुंद हो जाती है। प्यारे भाई और प्यारी बहन, हम आपसे कहते हैं, आपकी सुरक्षा इसी में है कि आप मांस को न छुएं।